श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका स्वागत है। आज के प्रसारण में हम लेकर आए हैं मनमोहक कार्यक्रमों की सुमधुर श्रृंखला। आज हम भजन शिक्षा प्रोग्राम के तहत हमारे प्रिय भगवान की वंदना करता हुआ एक सुमधुर भजन एवं भगवान बाबा द्वारा मुंबई में दिए गए एक दिव्य संभाषण का एक भाग सुनेंगे। हम आज साई का प्यार जीवन आधार कार्यक्रम के अंतर्गत एक मनोरम भेंट वार्ता के साथ ही साथ प्रेमावतार श्री सत्य साई के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के बाल्यकाल के कुछ अलौकिक प्रसंग और गान सरिता के तहत एक मधुर गीत भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रमों का शुभारंभ करते हैं।
अब प्रस्तुत है हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम साई का प्यार जीवन आधार। आज इसके अंतर्गत हम भगवान बाबा की पूर्व छात्रा रह चुकी सुश्री किरण बालाजी अरोड़ा के साथ हुई हमारी भेंट वार्ता का दूसरा भाग प्रस्तुत करेंगे। किरण जी भगवान बाबा के अनंतपुर स्थित महाविद्यालय संकाय के हिंदी विभाग में अपनी सेवाएं श्री चरणों में अर्पित कर रही हैं।
पुटपर्ती आने का बहुत अधिक जो इच्छा थी वो पिताजी के मन में एक आंदोलन पैदा करने लगी। उनकी इच्छा की, उन्हें लगा कि अगर मेरे गुरु नानक की संसार में है तो मुझे दर्शन अवश्य करने चाहिए।
बिल्कुल।
और हमें पता भी नहीं था, इतना अरसा हो गया, अब तो मुझे जाना ही चाहिए। और मन में एक प्रार्थना लगातार उनके रही कि मुझे भगवान बुलाओ, अपने दर्शन दो। तो ये हम सबका अनुभव ही है कि जब इच्छा ज्यादा हो जाती है तो रास्ता निकालते हैं स्वामी। तो ऐसा ही एक अवकाश आया कि एयरफोर्स में टीडी करके भेजा जाता था टेम्पररी ड्यूटी के रूप में, किसी न किसी छोटे काम के लिए 4-5 दिनों के लिए बाहर किसी अफसर को भेजा जाता था। तो ऐसा अवसर आया कि एयरफोर्स के यूनिट से जिसमें पिताजी काम करते थे टेम्पररी ड्यूटी से बैंगलोर के लिए 5-6 दिनों के लिए किसी अफसर को एक कार्गो के साथ भेजना था जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था।
अच्छा।
तो पहले किसी और अफसर को दिया गया था, अंत में किसी कारणवश उसने मतलब प्रार्थना की कि उसे ना भेजा जाए, तो पिताजी को तुरंत बुलाया गया और कहा कि आप जाइए। तो अचानक पिताजी घर दौड़ते हुए आए और एक घंटे में ही तैयारी की उन्होंने। बस इतना ही माँ को बताया कि मुझे बैंगलोर जाने का अवकाश मिला है, मैं जरूर दर्शन का प्रयास करूंगा। उन्होंने तुरंत सीतारमैया जी के साथ संपर्क स्थापित किया और पूछा कि कैसे क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि अपना काम जल्दी खत्म कर लेना और बैंगलोर ज्यादा दूर नहीं, बैंगलोर से पुटपर्ती ज्यादा दूर नहीं है, तो रात को बस जाया करती है, शाम को उसको पकड़कर आप पुटपर्ती पहुंच सकते हैं, आप चाहो तो 2 दिन का समय निकाल कर जा सकते हो और पाद नमस्कार लेने का जरूर प्रयास करना क्योंकि उसका अपना महत्व है। तो पिताजी इस भावना से भरकर बड़ी ही प्रसन्नता से बैंगलोर की ओर चल दिए, अपना काम तुरंत खत्म कर दिया और अफसर को बताकर कि मुझे बाहर जाना है, कारण नहीं बताया, कहाँ जा रहे ये भी नहीं बताया, लोग विश्वास करें न करें, वो तुरंत शाम की बस लेकर पुटपर्ती पहुंच गए। उन दिनों स्वामी भजन के बाद भी एक ना दर्शन का राउंड दिया करते थे, तो वो लास्ट का दर्शन देते देखकर भी स्वामी मुड़ते हुए अपने दरवाजे के अंदर जाने ही वाले थे जब पिताजी भागते हुए आश्रम के अंदर पहुंचे और उन्हें स्वामी की पीठ देखी। उन्हें लगा भगवान मैं इतनी दूर से आ रहा हूं, आप अपनी पीठ दिखा रहे हो। तो इतना तुरंत भगवान एकदम से मुड़े और पिताजी की ओर देखते हुए आशीर्वाद दिया, अभयस्त दिखाया और मुस्कुराकर फिर मुड़कर अंदर गए। तो इसी से बहुत प्रभावित होकर बहुत आनंदित हुए पिताजी।
ये कब की बात है, 1970?
ये 1970 से पहले की बात है।
अच्छा।
69 और 70 के बीच के समय।
अच्छा,
की बात है।
अच्छा।
तो तब दूसरे दिन पिताजी ऐसे उन दिनों पेड़ों के नीचे ही रहा करते थे लोग, पिताजी भी किसी पेड़ के नीचे अपना अपना बोरिया बिस्तर बांध खोलकर सो गए। सुबह नहा धो लिए, चित्रावती जाकर नहाया करते थे लोग, तब तैयार होकर दर्शन के लिए बैठ गए। पिताजी के मन में ही था कि मुझे पाद नमस्कार जरूर मिलना चाहिए। तो जैसे ही भगवान उनकी तरफ आए तो पिताजी एकदम उठकर नमस्कार लेने के प्रयास में बढ़े, तो बाबा ने कहा वेट वेट। तो पिताजी बैठ गए। फिर शाम को फिर भगवान पिताजी की ओर आने लगे तो फिर उन्होंने उठने का प्रयास किया, फिर भगवान ने कहा बैठो बैठो। तो साथ में कुछ विभूति के पैकेट और फोटो वोटो जैसे लोग लिया करते थे, जैसे उन्होंने देखा वो लेकर बैठे थे, तो नहीं जा पाए। और फिर स्वामी ने कहा बैठो बैठो वेट वेट। तो पिताजी को लगा कि क्या कारण हो सकता है, क्योंकि अगर उस शाम को पिताजी वापस के लिए नहीं चले तो बहुत कठिनाई हो जाएगी। एयरफोर्स में डिसिप्लिन बहुत स्ट्रिक्ट रहता है और कार्गो के साथ ही उन्हें वापस जाना था और बैंगलोर पहुंचना ही था दूसरे दिन।
बिल्कुल।
पर ये वेट वेट और बैठो बैठो का कुछ समझ नहीं पाए पिताजी की क्या करना है। किसी ने तब कहा कि तुम प्रोफेसर कस्तूरी जी हैं यहाँ पर, उनसे बात कर लो, वो तुम्हें कुछ गाइड कर सकेंगे। तो पिताजी वहां उनके पास चले गए। उन्होंने बोला मेरी ये समस्या है, मुझे तो जाना चाहिए। तो उन्होंने पिताजी को यही सुझाव दिया कि तुम रुक जाओ, जब खास बाबा ने वेट वेट और बैठो बैठो कहा है तो रुकना ही ठीक रहेगा, तुम चिंता मत करो, बाकी सब भगवान ही देख लेंगे। तो बाबा जी के ऊपर सब कुछ छोड़ते हुए मन हृदय में तो भय था ही, फिर भी छोड़कर बैठ गए। दूसरे दिन 11 बजे कार्गो की फ्लाइट वापस आगरा को जाने की थी और पिताजी पुटपर्ती में बैठे हुए। दर्शन हो गए, बाबा पास नहीं आए, भजन हो गए। उन दिनों 10 से 11 बजे भजन हुआ करते थे। भजन के बाद स्वामी बाहर निकल कर आए, पिताजी की ओर देखते हुए उन्होंने फिर वेट वेट कहा।
ये तो बड़ी दुविधा वाली
बात हो गई। ऐसी इस परिस्थिति में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब फिर वेट कहा, तो इसका मतलब अच्छा हुआ मैं रह गया, एक आश्वासन तो मन में लगा। किंतु ये फिर अब वेट, यानी अब मैं कैसे, अब जहां चला जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत संशय हृदय में, बहुत द्वंद्व हृदय में कि क्या करना चाहिए। पर कुछ भी, जैसे कस्तूरी जी ने कहा था कि वेट का मतलब ठहरना ही ठीक रहेगा, वो फिर शाम तक ठहर गए। शाम को भगवान सीधा मेरे पिताजी के पास आए, उन्हें आशीर्वाद दिया, नमस्कार दिया और बोला अब जा सकता है। जैसे आज्ञा ही दे दी। हाँ। और जैसे सब कुछ जानते हो। हाँ। और मेरे पिताजी का वहां टिक जाना, वो सब तो खैर जानकार थे ही। तो उस शाम को पिताजी ने सोचा कि अब मुझे कहाँ जाना चाहिए, जहाज तो चला गया होगा। हाँ। और मेरी नौकरी की बहुत बड़ी समस्या तो होगी ही, पर अब मुझे रेल से वापस जाना चाहिए कि क्या करना। हाँ। चाहिए। तो मन में उनके लगा कि नहीं, बैंगलोर जाकर एक बार देख लेना ही ठीक होगा कि परिस्थिति कैसी है, उस हिसाब से करूं। रात की बस उन्होंने पकड़ी, सुबह वहां पहुंचे, ऐसे ही 10:30 बजे तक पहुंच पाए थे। तो जाते ही उन्होंने इंक्वायरी की कि वो नंबर, प्लेन का नंबर, पैकेट कहा करते थे, उसमें 2-3 ट्रक्स अंदर आ सकते थे, इतना अधिक सामान उसमें आ जाया करता था। उन दिनों पैकेट करके एक हवाई जहाज रहता था जो कि वॉर्स में यूज किया करते थे और कार्गो को ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वो 100-100 नंबर है कि नहीं है, कहाँ है उसका आता पता। तो उन्होंने कहा वो तो गया ही नहीं, किसी ने बताया।
तो पिताजी, माय गॉड, कितना रिलीफ मिला होगा ये खबर सुनके उन्हें।
रिलीफ तो मिला ही, आश्चर्य और ज्यादा कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जो चीज जब होनी चाहिए एयरफोर्स में ना हो।
इतनी सेंसिटिव,
वो भी उन दिनों पाकिस्तान के साथ दूसरा वॉर भी हुआ ही था, तब तो मतलब एक प्रकार से भय था मन में कि वो कार्गो भी थोड़ा सीक्रेट वाला ही था।
हाँ।
तो कि क्या करना चाहिए, कैसे हुआ ये। तो उन्होंने पूछा भाई ऐसे कैसे हो सकता है। तो बोलते जो वहां पर इंक्वायरी में उन्हें बताया गया कि दूसरे कमरे में उनका एक अमर सिंह करके पायलट जो था पैकेट का, वो बैठा है, उसे जाकर पता करने से ठीक रहेगा, सारा डिटेल्स पता चल जाएंगे। तो पिताजी ऑलमोस्ट भागते हुए उनके पास गए, बोलते अमर सिंह या क्या हुआ, जहाज क्यों नहीं गया। तो पायलट ने कहा अरे भाई तू मुझे ये बता, तू गया कहाँ था बिना बताए। तो बोलते नहीं, ऐसे मेरी पहचान का कोई है, मैं ना चला गया था किधर, वो माने ना माने। हाँ। इसलिए पिताजी बताना नहीं चाहते थे, मैं मिलने गया था किसी से, नहीं तू ठीक ठीक मुझे बता दे कि तू गया कहां था, क्योंकि मुझे, मैं तभी अपनी कहानी बताऊंगा। तो पिताजी ने फिर हिचकते हुए बता ही दिया कि ऐसे साईं बाबा करके एक गुरु हैं, उनके ऊपर उनका विश्वास है, तो उनके दर्शन के लिए गए थे। तो अमर सिंह जी पायलट जो थे, उन्होंने कहा ओ तो तेरे बाबे ने ही सारा तेल पी लिया होगा। पिताजी और आश्चर्यचकित, तो उन्होंने कहा ये क्या तेल पी लिया, हुआ क्या मुझे बता सारा। तो उसने खुलासा करके बताया कि करेक्ट जब टाइम डिपार्चर का था, टेक ऑफ का था पैकेट का, तो तब टेक ऑफ हुआ।
अच्छा।
और पायलट जहाज में बैठा।
अच्छा।
और उसने जहाज चलाया रनवे में पूरा चक्कर लेकर, जब उड़ान भरनी थी
जी,
तब ब्रेक को टेस्ट एक बार उसने किया, दो बार, दोनों बार टेस्ट वो ब्रेक फेल हो गई। तो इस प्रकार से इतना कार्गो लेकर बिना ब्रेक के काम करते हुए जाना इट्स नॉट अलाउड ऑल्सो, बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए तुरंत उसने सिग्नल देकर कि टेक ऑफ नहीं हो रहा है, पैकेट को रोका और वापस हैंगर में ले आए उसको। हैंगर यानी वो शेड जिसमें रिपेयर्स वगैरह होती हैं। वहां पर पूरी टीम बैठी ये देखने के लिए कि ब्रेक क्यों नहीं लगा। तो इंजीनियर आए, उन्होंने सब मैकेनिक सब ने टेस्ट किया, सब कुछ ठीक लगा उन्हें कि
समझ नहीं आया उड़ान के वक्त क्या हो गया,
क्या हो गया था। अमर सिंह ये तो सब ठीक है। अब पायलट अमर सिंह जी को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, पर उन्होंने कहा साहब मैंने ब्रेक दो बार लगाया है पर मेरा ब्रेक नहीं लगा, इसीलिए मैंने रोका है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। दोबारा चेक करते हुए 3 घंटे लगे उसको चेक करने में। अल्टीमेटली किसी ने बोला कि एक बार ब्रेक ऑयल तो चेक करो कि है कि नहीं। तो जो स्क्वाड लीडर था उसने कहा कि ब्रेक ऑयल सबके सामने ही तो टैंक भरा है, कहाँ गया होगा। नहीं नहीं एक बार चेक करने में क्या है। तो अमर सिंह स्वयं उसके साथ इंजीनियर के साथ गया, उसने मतलब खोल कर देखा टैंक बिल्कुल खाली, सबके सामने भरा गया था टैंक,
गायब
पर गायब, एक बूंद भी तेल की उसमें नहीं है, ऐसा लग रहा था मानो उसमें डाला ही ना गया हो। तो अब स्क्वाड लीडर को बहुत अचंभा हुआ, उसने कहा चेक करो कहीं लीकेज होगा। तो कहीं लीकेज समझ नहीं है, उसने रनवे में चेक करो कहीं पर फ्रेश ड्रॉप ऑयल के गिरे हैं कि ताजे तेल की बूंदें कहीं गिरी हैं, तो पता चल जाएगा कि लीकेज रहा होगा। वो भी चेक किया गया जी, कहीं पर कोई फ्रेश तेल की बूंदों का कोई निशान नहीं था, पर फिर भी तेल गायब है। और ऊपर से ये कि तेल उस समय स्क्वाड्रन में अवेलेबल ही नहीं था ताजा भरकर भेजने के लिए। उन दिनों 3 यूनिट्स थे, तीनों यूनिट्स में ब्रेक ऑयल उपलब्ध नहीं था, आप विश्वास कर सकते हैं इस बात को। तो उन्हें फिर कैंसिल करनी पड़ी फ्लाइट। इतना बताने के बाद अमर सिंह जी ने कहा ये तेरे लिए इंतजार कर रहा था, देख अब हमने हैदराबाद से मंगवाया है ऑयल, वो देख तेरे पीछे पीछे टैंकर आ रहा है, अब इसमें ऑयल गिरेगा जाएगा और तेरे साथ ही फ्लाइट वापस जाएगी। तो ये बहुत बड़ा अनुभव था पिताजी के लिए, पूरे विश्वास को घनीभूत रूप से गहरे रूप से प्रतिष्ठित करने के लिए। उसके पश्चात तो परिवार ने फिर वापस देखा नहीं, बस हमारे भगवान है तो स्वामी के रूप में है। तो ये बहुत बड़ा अनुभव था और इसने हमारे विश्वास को गहरा दिया था।
अभी आप सुन रहे थे साई का प्यार जीवन आधार कार्यक्रम। आज इसके अंतर्गत भगवान बाबा के महाविद्यालय के अनंतपुर स्थित संकाय में सेवारत सुश्री किरण बालाजी अरोड़ा के अनुभवों का दूसरा भाग प्रस्तुत किया गया था। उनसे वार्तालाप कर रही थी टीम रेडियो साई की वरिष्ठ सदस्य श्रीमती करुणा स्वरूप मुंशी जी। ये भेंट वार्ता 25 मई सन 2012 में रिकॉर्ड की गई।
अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम भजन शिक्षा। कक्षा में प्रस्तुत हैं भगवान बाबा के प्रिय भजन गायकों में से एक श्री श्रीनिवासुलु सर एवं टीम रेडियो साई के प्रिय सदस्य श्री अनिरुद्ध श्रीनिवासन जी।
प्रेम भक्ति जगा मन में।
रेडियो साई भजन शिक्षा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज की कक्षा के लिए हमने हमारे प्रिय भगवान श्री सत्य साई बाबा की आराधना करता हुआ ये भजन चुना है। चलिए अब इस भजन के बोल जान लेते हैं।
प्रेम भक्ति जगाओ मन में, आओ मेरे हृदय में, बाबा तुम हो दीन जनों के बाबा, तुम हो भक्तजनों के साई आओ मेरे हृदय में बाबा।
आज की कक्षा के लिए इस भजन को ई पंचम श्रुति में गाया जा रहा है, जिसे सफेद तीन भी कहते हैं।
प्रेम भक्ति जगाओ मन में,
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 आओ मेरे हृदय में बाबा,
आओ मेरे हृदय में बाबा,
आओ मेरे हृदय में बाबा,
आओ मेरे हृदय में बाबा।
तुम हो दीन जनों के बाबा,
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 तुम हो भक्त जनों के साई,
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 आओ मेरे हृदय में बाबा,
आओ मेरे हृदय में बाबा,
आओ मेरे हृदय में बाबा,
आओ मेरे हृदय में बाबा।
प्रेम भक्ति जगाओ मन में।
कहरवा ताल और राग यमन पर आधारित इस भजन की धुन जान लेने के बाद आइए अब रुक करते हैं साई भजनों की आत्मा कहे जाने वाले भाव पक्ष का। इस भजन की सभी पंक्तियां और सभी शब्द सरल हैं, किंतु फिर भी इनमें निहित भाव को स्पष्ट उजागर करने के आशय से हम इस भजन की पहली और तीसरी लाइन में निहित गूढ़ार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। प्रेम इस सृष्टि का आधार है। भगवान बाबा ने इस बात पर जोर दिया है कि प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है। ये वाक्य अपने आप में भगवान का पूर्ण परिचय देता है। कैसे प्रेम इस सृष्टि का आधार है, इसे स्पष्ट करने हेतु भगवान ने एक बार कहा, मुझे समझने वाला कोई नहीं था, तब मैंने एक शब्द से इस सृष्टि की रचना की मेरी प्रसन्नता के लिए। मैंने अपने आप को अपने से अलग किया, जिससे मैं अपने आप को प्रेम कर सकूं। इस प्रकार भगवान अपने प्रेम की अनुभूति का आनंद उठाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने चाहा और ये ब्रह्मांड विविध रूप धारण कर प्रकट हो गया। भगवान ने एक बार टिप्पणी करते हुए कहा कि मेरे द्वारा विभूति का सृजन करना और अन्य वस्तुओं का सृजन करने के बारे में बात करना ठीक नहीं है। कभी कभी तो मुझे लोगों की अज्ञानता पर हंसी आती है जब वे मेरे द्वारा किए गए चमत्कारों के विषय में बात करते हैं और इसी में उलझे रहकर मेरे अंदर स्थित दिव्य तत्व की ओर ध्यान देना भूल जाते हैं। मेरे अंदर विद्यमान परम पवित्र गुण प्रेम है। इस प्रेम को नापा नहीं जा सकता है। मैं केवल और एकमात्र केवल प्रेम हूं और कुछ भी नहीं। मैं सदा सर्वदा प्रेम स्वरूप ही हूं और प्रेम ही सब कुछ है। लेकिन लोग ऐसे प्रेम को समझ नहीं पाते हैं। यहां पर श्रीमती गीता मोहन राम जी द्वारा उल्लिखित एक अलौकिक घटना स्मरण में आती है, जिससे यह स्पष्ट झलकता है कि हमारे प्रिय भगवान दिव्य और निस्वार्थ प्रेम के सागर हैं, और हम और आप भी ऐसे प्रेम को संसार में फैलाने की क्षमता रखते हैं। गीता जी भगवान बाबा की अनन्यतम भक्तों में से एक हैं। उनके दादाजी जो प्रशांति मंदिर के सर्वप्रथम पुजारी नियुक्त हुए से लेकर अब तक चार पीढ़ियों से उनका परिवार निरंतर स्वामी में श्रद्धा रखता आ रहा है। एक बार गीता जी ने भगवान द्वारा आयोजित समर कोर्स में भाग लिया। उस बार मुख्य विषय अहिंसा था। एक दिन वे अपनी सहेली के साथ उद्यान में बैठकर समर कोर्स के दौरान अब तक दिए गए उद्बोधनों में जो कुछ भी सुना था उसे लिख रही थी। वे जो कुछ भी लिख रही थी उसे लिपिबद्ध करने से पहले वे अपनी सहेली के साथ उस पर विचार विमर्श करके ही लिख रही थी, और बातचीत के दौरान वे बगीचे की घास को अनायास ही तोड़ती भी जा रही थी। कुछ समय बाद उनकी सहेली ने कहा, हम बात तो अहिंसा की कर रहे हैं, लेकिन देखो तुमने कितनी सारी घास यूं ही व्यर्थ में तोड़ डाली। गीता जी ने उनसे कहा, तुम क्यों बात बात पर दार्शनिक बन जाती हो, ये केवल घास ही तो है। समर कोर्स में नित्य का नियम था सुबह 4 बजे उठना, ओंकार एवं गायत्री मंत्र का जाप करना। गीता जी अमूमन ही इस दौरान हॉल में पीछे बैठे बैठे सो जाती थी। एक दिन वे जब इन प्रातः क्रियाओं के दौरान सो रही थी, किसी ने उनके कंधे को हल्के से थपथपाया। उन्होंने देखा तो भगवान उनके पास खड़े थे। डरते हुए उन्हें लगा कि अब उन्हें इस समर कोर्स से बेदखल कर दिया जाएगा, परंतु भगवान उन्हें चुप रहते हुए अपने साथ बाहर आने का इशारा करते हुए चल पड़े। वे गीता जी को समीप ही एक पुष्प वाटिका में ले गए और पूछा, कल तुमने क्या किया? गीता जी को कुछ नहीं सूझा कि भगवान किस विषय में बात कर रहे हैं, तो भगवान ने पुनः प्रश्न किया, कल अपनी सहेली के साथ जब तुम थी तब क्या कर रही थी? गीता जी ने उत्तर दिया, स्वामी मैं उसके साथ अब तक सिखाए गए पाठों को लिखते हुए उन पर चर्चा कर रही थी। स्वामी ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं वो नहीं, तुम घास क्यों तोड़ रही थी? उसमें भी चेतना होती है, वो जड़ नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और ऐसा कहते हुए स्वामी ने गुलाब के फूल की एक कली को छुआ, और देखते ही देखते वो कली खिलकर एक पूर्णतया विकसित गुलाब के फूल में परिवर्तित हो गई। आश्चर्य से देखते हुए गीता जी बोली, ऐसा तो केवल आप ही कर सकते हैं स्वामी, मैं नहीं। ना तुम भी ऐसा कर सकती हो। ये कहते हुए स्वामी ने गीता जी का हाथ पकड़कर एक और कली को स्पर्श कराया। छूते ही वही हुआ जो पहले हुआ था, वो कली भी तुरंत खिलकर फूल बन गई। स्वामी ने कहा, तुम संसार में जब किसी पर भी ऐसा प्रेम दर्शाओगी तो उससे भी अवश्य प्रतिक्रिया होगी, लेकिन तुम्हें मेरे जैसे प्रेम करना चाहिए, मेरी तरह प्रेम करने के ढंग को सीखना चाहिए। सबसे प्रेम करो, किसी को नष्ट नहीं करना। इस तरह भगवान ने एक सरल किंतु गहनतम विषय को अति विस्मयकारी ढंग से पढ़ाया। अगर आप और हम इस तरह की प्रेमाभिव्यक्ति दूसरों पर नहीं कर पाते हैं, तो यदि हम भगवान से इसके लिए प्रार्थना करें तो अवश्य उनका प्रेम हमसे निसृत होकर संसार में फैलेगा। चलिए अब चलते हैं तीसरी लाइन पर।
तुम हो दीन जनों के बाबा।
सन 2001 में 26 जनवरी के दिन जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, सुबह 9 बजे के लगभग गुजरात प्रांत के भुज शहर में आए भूकंप ने पूरे शहर को तबाह कर दिया था। हजारों की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई थी और कुछ ही पल में अनेकों बेघर हो गए। उस समय बाबा अपने बेंगलुरु स्थित आश्रम वृंदावन में थे, क्योंकि कुछ ही दिन पहले 19 जनवरी को व्हाइट फील्ड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन समारोह था। उस समय बाबा के महाविद्यालय में प्रबंधन विषय में स्नातकोत्तर के प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रहे श्री हरिशंकर जी बताते हैं कि भूकंप की उस घटना से उन सहित अनेकों छात्रों का हृदय द्रवित हो उठा। वे अपने अन्य छात्रावास निवासी भाइयों के साथ मिलकर भूकंप पीड़ितों की सहायतार्थ कुछ करना चाहते थे। उन्होंने छात्रावास में लगे इंटरकॉम के माध्यम से घोषणा की कि जिस जिस के पास पुराने कपड़े हों या कुछ सामान हो जिसकी उन्हें जरूरत नहीं है, उन्हें दे दें, ताकि उन सबको भेजकर भुज में लोगों को सहायता पहुंचाई जा सके। एक ही दिन में बहुत सारी सामग्री जमा हो गई, जिसे उन्होंने भुज भेज दिया। कुछ दिन पश्चात स्वामी प्रशांति निलयम पधारे। उन्होंने भुज के भूकंप पीड़ितों के लिए सहायता सामग्री भेजने का संकल्प लिया। 75 ट्रकों में भरकर बाबा ने लोगों के लिए धोतियां, साड़ियां और पीड़ितों के रहने के लिए बनाए जाने वाले अल्पकालिक व अस्थायी निवास बनाने हेतु बहुत सी सामग्री भेजी। जब भगवान सामग्रियों से लदे ट्रकों के काफिले को रवाना करके वापस मंदिर आ रहे थे, तब छात्रावास के वार्डन सर ने इसे उचित समय जान बाबा को विद्यार्थियों द्वारा इस दिशा में किए गए उस छोटे से प्रयास के बारे में अवगत कराया। उस समय हरिशंकर जी बाबा के समीप ही आगे की लाइन में बैठे थे। वे सोच रहे थे कि बाबा उन सबको शाबाशी देंगे, उनकी प्रशंसा में पीठ थपथपाएंगे, लेकिन उनकी आशा के बिल्कुल विपरीत ये समाचार सुनकर बाबा का हंसता हुआ चेहरा गंभीर हो गया और बाबा ने कहा, मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरे बच्चे इतने संवेदनहीन हो सकते हैं। मैंने जो सामग्री गुजरात भेजी है उसे देखो, मैंने नई धोतियां, नई साड़ियां भेजी हैं, और तुम लोगों ने क्या भेजा? अपने वे कपड़े, वे सामान जो अब तुम्हारे लिए भी उपयोगी नहीं है। जरा सोचो, जब वे तुम्हारे लिए उपयोगी नहीं है तो उन बेसहारा लोगों के उपयोग में कैसे आएंगे जिन्हें इस समय उपयोगी सामग्रियों की ही जरूरत है। ये सुनकर हरिशंकर जी को लगा कि वाकई उन लोगों को अभी प्रेम और संवेदना के बारे में और बहुत कुछ सीखना है। उन्हें तो बुनियादी स्तर पर भी इसका ज्ञान नहीं है। वे कहते हैं, हमारे लिए गुजरात के लोग अनजान और अपरिचित थे, जिनसे हमारा कोई नाता नहीं था, लेकिन भगवान के लिए वे भी उनके ही बच्चे थे। हम लोग भूल गए थे कि वे भी हमारी तरह ही इज्जतदार लोग हैं। केवल बाबा को ही उनके मान सम्मान की चिंता थी। भगवान बाबा ने कुछ वरिष्ठ लोगों को भी राहत सामग्री के काफिले के साथ रवाना किया था और हिदायत दी थी कि वे ये राहत सामग्री भूकंप पीड़ितों को व्यक्तिगत रूप से प्रदान करें। स्वामी ने कहा, उनके साथ प्रेम से बोलो और फिर जो सामान देना है उसे दो। ऐसा नहीं कि आप सब सामान एक जगह इकट्ठा कर दो और किसी व्यक्ति को बांटने का कार्य सौंप दो। भूकंप से पीड़ित लोगों ने उनकी सहायता के लिए श्री सत्यसाई सेवा संगठन के द्वारा की गई सेवा के लिए कृतज्ञता व्यक्त की और कहा कि इन्होंने उन्हें पूरा सम्मान भी दिया। संभ्रांत घरों के लोग जो इस आपदा के कारण एक क्षण में ही बेघर हो गए थे, वे लोगों द्वारा उनकी ओर बेरुखी से फेंकी गई सहायता सामग्री को देखकर आहत हो जाते थे, लेकिन भगवान ने उनको सामान के साथ साथ सम्मान भी दिया और उनको विश्वास भी दिलाया कि वे उनका कल्याण चाहते हैं, रक्षा करना चाहते हैं। यही तो हमारे प्रिय भगवान श्री की एक अनूठी अदा है जो भक्तों का हृदय छू लेती है। वे ही एकमात्र शरणार्थियों के रक्षक हैं। तो चलिए, इन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत होकर हम इस भजन को एक बार पुनः दोहराते हैं।
प्रेम भक्ति जगाओ मन में, प्रेम भक्ति जगाओ मन में, प्रेम भक्ति जगाओ मन में। भक्त जनों के साई, तुम हो भक्त जनों के साई, तुम हो भक्त जनों के साई, तुम हो भक्त जनों के साई। आओ मेरे हृदय में बाबा,
के साथ हमारे आज के भजन प्रशिक्षण के कार्यक्रम का अब समापन होता है। हमें आशा है कि आपको आज की कक्षा पसंद आई होगी। हम शीघ्र ही एक और भजन लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें, जय साई राम।
साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश अब हिंदी में।
अब प्रस्तुत है अवतार वाणी। भगवान बाबा द्वारा 23 जनवरी सन 1983 को मुंबई में एक अवसर पर दिए गए दिव्य संभाषण का तीसरा भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
ప్రేమ స్వరూపులారా,
మనం అనేక గ్రంథములు చదువుతున్నాం,
హమ్ కై కితాబేన్ పఢతే హై,
అనేక మంది పెద్దలను దర్శిస్తున్నాం,
కై బడే బడే లోగోన్ కే సంపర్క్ మే,
కానీ భౌతిక శక్తులపైన ఆధారపడి ఉంటున్నాము,
లేకిన్ హమ్ భౌతిక శక్తియోం పర్ నిర్భర్ హై,
అయితే ఈ భౌతిక శక్తులు ఎంతవరకు మనం రక్షిస్తాయి,
ఏ భౌతిక శక్తియా ప్రాకృతిక శక్తియా హమారీ కహా తక్ రక్షా కరేంగి,
విశ్వామిత్రుడు క్షత్రియ బలమును ధన బలమును జనబలమును ఆధారము చేసుకుని వశిష్ఠుల వారిపైన అనేక విధమైనటువంటి యొక్క సాధనలు సాధిస్తుకుంటూ వెళ్లాడు,
విశ్వామిత్రుని अपने क्षात्र बल धन बल और जन बल के सहारे वशिष्ठ पर आक्रमण किया था,
कानी कट्ट कड़पटकी क्षत्रिय बलमु दुर्बलमु मानव लौकिक बलमु दुर्बलमु अनी तानु सत्यानि गुर्तिंचुकोनी निज बलमैनटुवंटि दैव बलमुनकु प्राकुलाडुतू वच्चाडु,
लेकिन अंत में विश्वामित्र को पता चला कि यह क्षात्र बल बलहीन है, दुर्बल है, कमजोर है, इसमें कुछ नहीं है, दैव बल ही बल है,
जगत् नुंडिनटुवंटि ओक सर्व बलमुलु कूडनु एदो ओक कालमुलो क्षीणिंचि पोतायि, नशिंचि पोतायि, मार्पु चेंदुतायि,
संसार में जितने शक्ति सामर्थ्य हैं वो कभी न कभी क्षीण हो जाते हैं, मिट जाते हैं,
कानी मार्पु चेंदनटुवंटि ओक सत्यमु ओक्कटि मात्रमे, अदे धर्म बलमु दैव बलमु,
लेकिन जो बल जो शक्ति कभी क्षीण नहीं होती है, सच्ची शक्ति है, वो केवल धर्म की शक्ति है, दैव की शक्ति,
कनुक कालमुनु मनमु क्षणमैनप्पुडु दुर्विनियोगं चेयरादु,
इसलिए समय का कभी भी एक क्षण भी हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए,
पूर्वमु బెనారస్ యూనివర్సిటీ లోపల ఒక ప్రొఫెసరు అత్యంత భక్తుడిగా తన కాలమును సాత్వికమైనటువంటి మార్గములో పవిత్రము గావించుకుంటే ఉండేటువంటి వాడు.
పురాణి ఏక్ ప్రొఫెసర్ థే జో అప్నే సమయ కా బహుత్ సదుపయోగ్ అచ్చే అచ్చే కోమ్ లగా కే కర్తే థే.
తన కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించుకుంటూ కాలము చిక్కినప్పుడు దైవమును పూజించి ఆరాధించి ఆనందమును అందుకునేవాడు.
అప్నే కర్తవ్య కా పాలన కర్తే థే, భగవాన్ కి పూజా కర్తే థే, ఆరాధనా సే జీవన్ కో సార్థక్ బనా రహే థే.
తెల్లవారి 10 నిమిషములు, సాయంకాలం 10 నిమిషములు ఏదో అర్చనలు గావించుకుని ఆనందించేటువంటి వాడు.
సుబ ఔర్ శామ్ 10 మినిట్ కా సమయ లగాకే పరమాత్మా కా ధ్యాన్ కియా కర్తే థే.
అయితే ఈ విధంగా జరుపుతున్నటువంటి ప్రొఫెసర్ చూచి తోటి ప్రొఫెసర్స్ అంతా కూడాను హాస్యంగా అతనిని కొంతవరకు చులకనబరుస్తూ వచ్చారు.
ఇస్ ప్రకార్ కా సదాచార్ కర్నే వాలే ప్రొఫెసర్ కో దేఖకర్ ఉన్కే సాథీ ప్రొఫెసర్ హసీ బంజా కియా కర్తే థే, ఉన్కా ఉపహాస్ కర్తే థే.
ప్రొఫెసర్ నీవు దినానికి 20 నిమిషములంతా కూడాను వేస్ట్ చేస్తున్నావు, టైం చాలా దుర్వినియోగం చేస్తున్నావు అన్నారు.
ఓ కహా కర్తే థే కి ప్రొఫెసర్ సాహబ్ ఆప్ దిన్ మే 20 మినిట్ కా సమయ బర్బాద్ కర్ రహే హై.
అప్పుడు ఈ భక్తుడైనటువంటి ప్రొఫెసర్ చెప్తున్నాడు, నాకు దేవుడు కలడనేటువంటి విశ్వాసము, నీకు లేడనేటువంటి విశ్వాసం.
ఓ ప్రొఫెసర్ సాహబ్ నే తబ్ కహా థా, భక్త ప్రొఫెసర్ నే, ముఝే భగవాన్ పర్ విశ్వాస్ హై ఔర్ తుమ్కో విశ్వాస్ హై కి భగవాన్ నహీ హై.
ఈ విశ్వాసమునకు నో రీజన్ నో సీజన్,
ఇస్ విశ్వాస్ కే లియే కోయి కారణ నహీ హై, హేతు నహీ హై.
విశ్వాసమునకు మించినటువంటిది మరొకటి లేదు.
విశ్వాస్ సే బఢకర్ సంసార్ మే కుచ్ హై నహీ.
అయితే నా విశ్వాసం కొలది, నీ విశ్వాసం కొలది, ఈ విధమైనటువంటి సంభాషణ జరుగుతూ వస్తున్నాయి.
లేకిన్ మేరా విశ్వాస్ అలగ్ హై, ఆప్కా విశ్వాస్ అలగ్ హై, ఇసిలే హమ్ ఇస్ తరహ్ కీ బాత్ కర్ రహే
హై. ఇది నీ మాట ప్రకారమే దైవమే లేకుండినా నాది దినమునకు 20 నిమిషములు వృథా అయిపోతుంది.
అగర్ తుమ్హారే కహే అనుసార్ భగవాన్ నహీ హై తబ్ హమారా 10-20 మినిట్ వ్యయ హో రహే.
ఒకవేళ నా విశ్వాసం కొలది దైవమేగిన ఉంటే నీ జీవితమంతా వృథా అయిపోతుంది అన్నాడు.
అగర్ మేరే విశ్వాస్ కే అనుసార్ భగవాన్ హై తో తుమ్హారా సారా జీవన్ వ్యర్థ హై.
విశ్వాసంతో ఏ కొద్ది అయినా కూడాను కొంత నష్టం పడవచ్చును, అవిశ్వాసంతో జీవితమే నా పాటుపడిపోతుంది.
విశ్వాస్ సే థోడీ హాని హమ్ ఉఠా సక్తే హై లేకిన్ అవిశ్వాస్ సే సారీ హాని హీ హాని హోతీ.
కనుక విశ్వాసములు అవిశ్వాసములు కేవలము జన్మాంతర సంస్కారములే.
విశ్వాస్ హో యా అవిశ్వాస్ హో జన్మ జన్మాంతర కే సంస్కార్ కే కారణ హోతే.
నిజముగా దైవత్వాన్ని గుర్తించుకోలేనటువంటి వ్యక్తులు ఇది గాఢమైనటువంటి యొక్క కర్మఫలమే.
జో అప్నే అందర్ కే దివ్యతకు నహీ పహచాన్తే హై కి కర్మ కా ఫల్ భోగతే.
తన యొక్క తత్వాన్ని తాను విశ్వసించలేనిటువంటి మానవుడు ఇంక దేనిని విశ్వసించగలడు?
జో అప్నే ఆప్ పర్ విశ్వాస్ నహీ కర్ సక్తా హై వో కిస్ పర్ విశ్వాస్ కర్ సక్తా హై.
కనుక మానవునికి విశ్వాసము నిజమైన శ్వాసం.
మానవ్ కే లియే విశ్వాస్ సచ్చీ సాంస్ హై.
ఇది కొన్ని సమయములో ఈ విశ్వాసం అభివృద్ధిగా ఉంటుంటది.
కభీ కభీ ఏ విశ్వాస్ కి భావన బఢ్ జాతీ హై.
కొన్ని సమయాల్లో అది క్రమక్రమేణా సన్నగిల్లుతుంటాది.
కభీ కభీ ఏ విశ్వాస్ కి భావన క్షీణ్ హోతీ.
దీనిని శాస్త్రమునందు క్షీణే పుణ్యే మత్స్యలోకం విశంతి, నీ పుణ్యఫలం ఉండినంత వరకు కూడాను ఈ విధమైనటువంటి సన్నిహిత సంబంధ బాంధవ్యం చేత నీ విశ్వాసం బలపడిపోతుంది.
ఇసీ కో శాస్త్రం మే కహా గయా హై కి జబ్ పుణ్య కి భావన క్షీణ్ హో జాతీ హై తో ఫిర్ మత్స్యలోక్ మే ఆద్మీ పహుంచ్ జాతా హై.
కనుకనే ఆ పుణ్యమంతా క్షీణించిన తర్వాత ఇంకా పాప ఫలము నిన్ను వెంటగట్టుకుని ఆడుతూ వస్తున్నది. దానివల్లనే దైవత్వం నుంచి దూరం అయిపోతున్నారు.
ఇస్సే దైవ భావనసే దూర్ హోతా జాతా హై.
ఇది పాప ఫలం యొక్క ప్రసాదమే.
ఏ పాప కా పరిణామ హై.
కనుక మానవత్వములో నిరంతరము కూడాను దైవత్వం అనేటువంటి విశ్వాసాన్ని మనం బలపరచుకోవాలి.
మానవ జీవన్ మే ప్రత్యేక ప్రాణి కో చాహియే కి భగవాన్ కి దివ్య భావన పర్ విశ్వాస్ రఖే.
నిజముగా మానవ జీవితమునందు అంతకంటే ఆనందవంతమైనటువంటి యొక్క ప్రాప్తి మరొకటి లేదు.
వైసే దేఖా జాయే తో మానవ జీవన్ మే ఇస్సే బఢకర్ ఆనంద దేనే వాలీ కోయి చీజ్ హై నహీ.
ఇవన్నీ ఉండి కూడాను మానవుడు అనుభవించేదేమిటి?
సబ్ కుచ్ హై లేకిన్ ఆద్మీ అనుభవ్ క్యా కర్తా హై.
సర్వము సౌఖ్యంతో కూడినటువంటి మానవుడు కూడాను నిజమైన శాంతికి దూరం అయిపోతున్నాడు.
కై ప్రకార్ కే సుఖ సువిధాయే జిన్కే జీవన్ మే హై వో భీ సచ్చీ శాంతి సే దూర్ హోతా జా రహా హై.
మనం అనేక విద్యలు అభ్యసిస్తున్నాము.
కై ప్రకార్ కే శిక్షాఓం కా హమ్ అభ్యాస్ కర్ రహే హై.
ఈ విద్యలలో ఉండినటువంటి యొక్క వివేకం ఏమిటి?
ఇన్ శిక్షా ఈ సారే శిక్షా సే క్యా ఫైదా హోతా హై.
ఈ వివేకము కేవలము తన్ను తాను తెలుసుకోవటమే గొప్ప వివేకము.
इस शिक्षा से, समस्त शिक्षा से जो विवेक की भावना होती है उसका परिणाम है अपने आप को पहचान।
मानव जीवित चाला विलुवैनटुवंटिदि।
मानव का जीवन बहुत ही मूल्यवान है।
ई जीवित मनुकु प्राणमु मरिंत प्रधानमैनटुवंटिदि।
इस जीवन में प्राण सबसे प्रधान है।
कनुक ఒక్కొక్క సమయంలో ప్రాణమునైనా లక్ష్యం చేయక సాధించవలసినటువంటి కార్యం ఎన్నో ఉంటున్నది మానవత్వంలో।
ప్రాణ కి పర్వాహ కియే బినా జీవన్ మే జిస్కో హమ్ సాధ సకే ఐసి చీజ్ హై।
అయితే ఒక్కటి సాధించినంత మాత్రమే తృప్తి చెందేటువంటి స్వభావం కాదు మానవుని।
ఏక్ హీ చీజ్ కి సాధన కర్నే సే ఆద్మీ సంతుష్ట నహీ హోతా హై।
ఇంకా అనేక విధంగా సాధించాలనేటువంటి ఆశ మానవుని యందు ఉంటున్నవి।
और कई प्रकार की चीजें अपनाने की भावना आदमी में स्वभाव सिद्ध है।
आईती इदि ये नाटि के अंत्यमो।
लेकिन इसका अंत कहाँ है?
इदि केवल मनम चेस्तु चेस्तु उंटे अभिवृद्धि अंदुतुने उंटुंटादि।
जैसे जैसे हम करते जाते हैं वैसे वैसे बढ़ता जाता है।
मनमु कोन्नि रकमुल यंदु इतरुल योक्क मंचिनि चूची मनलो ओक विधमैनटुवंटि असूया भावं पेरुगुतुंटादि।
कभी कभी हम किसी की भलाई देखकर अपने अंदर ईर्ष्या से कुढ़ जाते हैं।
ये असूय चेत కేవలము నిజమైనటువంటి భక్తులను కూడాను అపహాస్యం చేస్తూ ఉంటారు।
ఇస్ ఇర్ష్యా కి భావన సే సచ్చే భక్త భీ హసీ మజాక్ కే పాత్ర హో జాతే హై।
కాన భక్తుడనేటువంటి వాడు ఏ విధమైనటువంటి దూషణ భూషణములకు పొంగక కుంగక సమత్వాన్ని సాధించడానికి ప్రయత్నించాలి।
లేకన్ సచ్చా భక్త వహీ హై జో జిస్మే నా ఇర్ష్యా కి భావన హోతీ హై జో కభీ క్షీణ నహీ హోతా హై కభీ ఉభర్ నహీ పాతా హై।
వ్యక్తిగతమైనటువంటి ద్వేషము చేత మానవులను అనేక విధములుగా కూడా చులకన పడుస్తుంటారు।
వ్యక్తిగత ద్వేష భావన సే ఆత్మీ హసీ మజాక్ కే పాత్ర హో జాతే హై।
ఇది మున్ముందు చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటి స్థితిని కల్పిస్తుంది।
ధీరే ధీరే ఆగే చల్కర్ యే ఖతర్నాక్ హో సక్తా హై।
కేవలం ఒక్క ఎలుకను చంపే నిమిత్తమై ఇంటికి అగ్గి పెట్టుకున్నటువంటి ఒక మూర్ఖుని వలె ఉంటుంటాది।
కేవల్ ఏక్ చూహే కో మార్నే కే లియే సారే మకాన్ కో జలా దే ఐసా బేవకూఫ్ కౌన్ హై।
ఒక వ్యక్తిపై ఉండేటువంటి అసూయ వల్ల తన ఉన్నటువంటి యొక్క దివ్య భావములంతా కూడా తాను మార్చుకుంటున్నాడు।
కేసీ వ్యక్తికి ప్రతి ఇర్ష్యాకి భావన హోనే మాత్రసే అప్నే ఆప్కో బర్బాద్ కర్ రహా హై యే వివేక।
దేహము ఒక గాజు ఇల్లు వంటిది।
శరీర్ హై కాంచ్ కే మకాన్ కే బరాబర్ హై।
ఇది కేవలము ఒక విధమైనటువంటి సూక్ష్మమైనటువంటి ఒక తత్వము।
యే శీష్ మహల్ బహుత్ హీ సూక్ష్మ బారీక్ చీజ్ హై।
ఈ ఇల్లు కలిగినటువంటి వ్యక్తి పర్ర ఇంటిపైన రాళ్లు వేస్తుంటే ఏనాడు తన ఇంటిపైన పడుతుందో అది తాను గుర్తించుకోలేకపోతున్నాడు।
శేష్ మహల్ జైసే శరీర్ మే రహనే వాలా ప్రాణి దూసరే మహల్ కే ఊపర్ పత్థర్ ఫెంకే తో ఫిర్ ఉస్కా పరిణామ్ క్యా హోగా యే
కనుక గాజు ఇల్లు కలిగినటువంటి వ్యక్తి ఇంకొకరిని కొంతవరకు మనం హింసించకుండా చూసుకోవాలి। దేనివల్ల తనకే ఉపకారం కలుగుతుంది।
कांच के महल में शीश महल में रहने वाले व्यक्ति को चाहिए कि दूसरे महल के प्रति किसी प्रकार के अपकार
एवरी की मन ये भी चेसिनप्पटिकी आ रियाक्शन आ रीसाउंड आ रिफ्लेक्शन एनाडो ओकनाडो मनकु संभविस्तुंदी।
दूसरों के प्रति हम जो भी करेंगे उसकी प्रतिक्रिया उसका प्रतिबिंब और उसकी प्रतिच्छाया हमारे ऊपर पड़ेगी।
करुण परुणनु बाधिंचक परुणनु नोप्पिंचक परुणनु ये विधमैनटुवंटि हास्यास्पदंगा नीवु चूडक नीवु सरियैनटुवंटि गुणंगा उंटुन्नप्पुडे नीवु बुद्धिमंतुडु अवुतावु।
जब हम दूसरों के प्रति ईर्ष्या भावना नहीं रखते हैं उसकी बुराई नहीं चाहते हैं तभी हम अपने कर्तव्य का पालन सही ढंग से कर पा रहे हैं।
इदि विद्या योक्क विलक्षणम।
यही शिक्षा की विशिष्टता है।
अभी आप सुन रहे थे अवतार वाणी। आज आपने भगवान बाबा द्वारा मुंबई में दिए गए एक दिव्य संभाषण का तीसरा भाग सुना।
साई प्रेम वाणी के इस भाग गान सरिता में आपका पुनः अभिनंदन। अब हम सुनने जा रहे हैं एक सुंदर मूल्य गीत जिसमें बाल विकास के नन्हे बच्चों को मधुर तरीके से सच बोलने और सच्चाई के रास्ते पर चलने की शिक्षा दी गई है। ये गीत हम सब के लिए एक बार पुनः बाबा की शिक्षाओं पर चलने का भाव जीवित कर देता है। आइए सुनते हैं ये गीत जिसके बोल हैं, एक बात सदा ये याद रहे, सच्चाई हमेशा साथ रहे।
Thank you.
जैसा कि हम जानते हैं कि इस वर्ष 2019 को हम बाल विकास कार्यक्रम के स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में मना रहे हैं, इसलिए ये गीत श्री सत्य साई बाल विकास के बच्चों के लिए एक बहुत ही सुंदर वो उपयोगी मूल्य गीत है और इसे साई संस्कार गीत माला भाग एक में श्री सत्य साई बुक्स एवं पब्लिकेशन ट्रस्ट मध्य प्रदेश ने प्रकाशित किया है।
साई राम प्रेमावतार श्री सत्य साई में आपका स्वागत है। अब प्रस्तुत है सत्यम शिवम सुंदरम से लिए गए भगवान श्री सत्य साई बाबा के दिव्य जीवन के अलौकिक प्रसंग। आज के प्रसारण में हम सुनने जा रहे हैं बाबा के मैसूर प्रवास, सर्प रूप में दर्शन, तमिलनाडु, त्रिचिन्नापल्ली, कुप्पम, करूर, उदुमलैपेटे इत्यादि स्थानों की यात्रा से प्रसंग तथा दुर्घटना से एक बच्चे को बचाने व एक मूक बालक को तक्षण ही बोलने की शक्ति प्रदान कर उसके मूक होने की अक्षमता को दूर कर देने के दिव्य प्रसंग।
एक समय बाबा दीपावली के ठीक दूसरे दिन मैसूर राजवंश में किसी के निमंत्रण पर मैसूर गए। दीपावली के दूसरे दिन बाबा के वहां निश्चेतन होकर पुट्टपर्ती में भक्तों को नागराज के रूप में दर्शन देने की घटना अत्यंत ही चित्ताकर्षक है। पुट्टपर्ती में जितनी कालावधि तक सर्प का दर्शन होता रहा, मैसूर में बाबा देह छोड़कर निश्चेत हुए बैठे रहे। यही है इस घटना की विचित्रता। हुआ ये था कि उस दिन मंदिर में ताला लगा होने के कारण उसकी सीढ़ी पर ही बाबा के चित्र को रखकर उसके दोनों ओर दीपक जलाकर भक्तजन भजन कर रहे थे। कहते हैं बाबा ने उन भक्तों को आश्वासन दिया था, मेरे मैसूर जाने पर भी तुम लोग यहीं मेरे दर्शन पाओगे। एक दिन प्रातःकाल 8:30 बजे उस चित्र को घेरे एक नागराज अचानक ही दिखाई दिए। शिरडी साईं चरित्र में भी ऐसी घटनाओं की व्याख्या मिलती है। आज भी कोयंबटूर साईं मंदिर एक नागराज के आविर्भाव एवं अंतर्ध्यान से नाग साईं मंदिर में परिवर्तित हुआ है, संभवतः अनेकों को ज्ञात होगा। प्रातःकाल के उन भजन पूजा आरती आदि किसी से भी वो सर्प नहीं हटा। ग्रामवासी दौड़े हुए आकर हल्दी कुमकुम आदि से अर्चना करने लगे। एक पुरोहित जी मंत्र घोष करने लगे। नारियल फोड़े गए, कर्पूर से आरती की गई। एक महिला को नारियल के टुकड़ों का प्रसाद देने पर वो असंतुष्ट होकर कहने लगी कि मेरे द्वारा पूजा के लिए लाया गया नारियल तो बड़ा था, कहकर उस पवित्र समय में भी उसने झगड़ा शुरू किया। आपके पास दूसरा टुकड़ा भूल से आ गया होगा, कहकर क्षमा मांगने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ। उसका ये अनुचित व्यवहार देखकर नागराज उसकी ओर अपना फन घुमाकर जोर से फुफकारने लगे। महिला भयभीत होकर सिर पर पैर रखकर भाग गई। दोपहर 2 बजे नागराज अदृश्य हुए। उसी समय इधर बाबा सचेत होकर उठ बैठे। लगभग उन्हीं दिनों श्रीमती साकम्मा आदि भक्तों के साथ बाबा हैदराबाद पधारे थे। वहां अनेक वर्षों से शिरडी साईं बाबा की भक्त बनी चिंचोली वंश की रानी तथा उनके बांधव बाबा को अपने पुरातन गृह को ले गए। उस समय शिरडी साईं बाबा के समय के विषयों को याद कर बाबा द्वारा निर्देशित करने पर भक्तों का ये विश्वास दृढ़ हो गया कि बाबा शिरडी साईं बाबा के ही अवतार हैं। वहां से लौटने पर बाबा तमिलनाडु जाकर आए। बेंगलोर के समीप के कुप्पम से करूर, त्रिचिनापल्ली, उडुमलैपेटे इत्यादि स्थानों को गए। सभी स्थानों में लोगों ने भक्ति आदर से स्वागत कर बाबा को गौरव प्रदान किया। त्रिचिनापल्ली के ब्राह्मणों ने पूर्ण कुंभ से आदर कर आह्वान किया। जुलूस के लिए एक हाथी भी लाया गया था। वेद घोष करते स्वागत समिति के लोगों ने नगर में बाबा का स्वागत किया। अपने अंतःकरण को परिशुद्ध कर रखिए, अपने अपने हृदय कमलों में परमात्मा के निवास के लिए दुर्गुण रूपी कांटों को निकाल फेंकिए, अपने मन को काबू में रखना सीखो, अधैर्य को अवसर देने पर नाश प्राप्त होगा। आपके अंतर में भगवान ही जब रक्षक बनकर आपके पास ही हैं, तो फिर धैर्यहीन क्यों होते हो? बाबा ने यह ज्ञान दिया। एक संध्या के समय बाबा की कार के पीछे की एक भक्त की कार अचानक एक बालक पर चढ़ गई। उसका सारा शरीर घावों से भर गया। भारी भीड़ जम गई, किंतु शीघ्र ही अपनी कार से उतरकर बाबा ने उस बालक को प्रेम से उठा लिया। उसी समय वो बालक पूर्व के समान स्वस्थ हो दौड़ धूप करने लगा। थोड़े पुलिस वालों ने भी पूछताछ करने का प्रयत्न किया, किंतु दुर्घटना में फंसे उस बालक का कहीं पता नहीं चला। वे सब आपस में चर्चा करते वापस चले गए। कारों के वहां से निकल जाने पर भी कई लोग अतिशय आश्चर्य, आनंद और कौतूहल से उस घटना की वास्तविकता जानने के लिए पूछताछ करते रहे। इसी प्रकार दूसरा बालक भी बाबा के आशीर्वाद का पात्र हुआ। त्रिचनापल्ली की एक महासभा में बाबा प्रवचन दे रहे थे। उसी समय सभा में उपस्थित कई लोग बाबा की दिव्य शक्ति के विषय में आपस में चर्चा कर रहे थे। मंच पर खड़े बाबा तो सब जान रहे थे। उसी समय उन्होंने उस समूह के पास ही खड़े एक मूक भिक्षुक बालक को अपने पास बुलाया। माइक के पास उस बालक को खड़ा कर बाबा ने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बालक ने मुंह खोला और शंकापूर्ण स्वर में वह गूंगा बोल उठा, वेंकट नारायणन। और उस माइक के मुंह से मुंह लगाकर जोर से रोने लगा। वेंकट नारायणन, यह ध्वनि लाउड स्पीकर द्वारा सारे गांव में व्याप्त हुई। क्या हुआ, क्या हुआ? यह कोलाहल सारे गांव में मच गया और सब लोगों ने बाबा की महिमा जान ली। बाबा कहते हैं, इससे एक अनोखी घटना भी घटित हुई। गूंगा बोल उठा, यह समाचार सारे गांव में फैल गया था। सूर्योदय के पूर्व ही बाबा के निवास स्थान के चारों ओर हर कोने में मूकों के झुंड दिखाई देने लगे। साथ में उनके अपने अपने बांधव हितैषी भी थे, लेकिन संभवतः उनमें उस सौभाग्य प्राप्ति की परिपक्व दशा न देखकर बाबा उस कोठी से प्रातः काल के समय ही गांव छोड़ चले गए। करूर, त्रिचनापल्ली आदि गांव के दुकानदार तथा अन्य प्रतिष्ठित जनों ने बाबा का विशेष वैभव युक्त स्वागत किया। फूल वालों को बुलाकर उनसे पूजा मंडप अत्यंत रमणीयता से सजवाया गया। सुगंधित जल से उनके चरण धोए, नयन मनोहर हारों से उन्हें अलंकृत किया, दूर दूर से लाए गए फल भी अर्पण किए। किंतु बाबा उन्हें उपदेश देते रहे, ये सब केवल आडंबर है, दिखावा है। मेरे लिए तुम्हारा परिशुद्ध हृदय मंडप है, सच्चा मन ही पुष्प है, सत्कर्म रूपी फल तथा प्रेम के अश्रु रूपी पावन जल ही आवश्यक हैं। बाबा के संकल्प से घटित सब चमत्कार भक्तों की श्रद्धा दृढ़ बनाने एवं उनको अपने उपदेशानुसार श्रद्धा से आगे बढ़ाने के लिए ही हैं। मैसूर के अरसो घराने के लोगों के यहां जब पाद पूजा हो रही थी, दोनों ओर से एक एक सांप आकर रखे हुए दोनों दीपों के पास फन उठाकर नाचकर अदृश्य हो गए। बाबा के अभय संकेत के कारण पूजा यथाविधि चलती रही, किंतु आज भी उस अद्भुत अनुभव को वहां के लोग भूले नहीं हैं। इस प्रकार के चमत्कारों से जनता की भक्ति एवं श्रद्धा में बल का नव संचार होता है। ये बाबा भली भांति जानते हैं। क्रमशः उनको अपनी ओर खींच, उनको सुधार की ओर अग्रसर कर उन्हें उन्नत करते हैं। रत्ती भर भी कम न होने वाली परिशुद्धि एवं प्रामाणिकता ही बाबा के प्रिय गुण हैं। आध्यात्मिक साधना में संपूर्ण उत्साह से तल्लीन रहने पर ही उनका संपूर्ण अनुग्रह प्राप्त हो सकता है। जय साईं राम।
भगवान के द्वारा की गई यात्राएं और रोमांचक संस्मरण आज भी उन क्षेत्रों के भक्तों द्वारा याद किए जाते हैं। चमत्कार से परोपकार करते हुए मानव को माधव बनने का रास्ता भगवान श्री सत्य साई बाबा ने दिखाया। प्रेमावतार श्री सत्य साई बाबा के जीवन के कुछ और अलौकिक प्रसंगों के साथ अगले भाग में आपसे फिर मुलाकात होगी। साई राम।
इसी के साथ हमारी आज की साई प्रेम वाणी कार्यक्रम की प्रस्तुति का अब समापन होगा। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझाव एवं परामर्श से हमें ईमेल द्वारा या व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर जरूर अवगत कराएं। हमारा पता है listener@radiosai.org listener@radiosai.org एवं हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393258 हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां यूट्यूब पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रेडियो साई हिंदी को सब्सक्राइब करें। आप हमसे अपने विचार वहां कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी देकर भी साझा कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर हमारे कार्यक्रमों को मन मुताबिक सुनने और डाउनलोड करने के लिए आप radiosai.org/hindi पर भी जा सकते हैं। जय साई राम।
हमारा ये जीवन हर पल हर क्षण हर लम्हा भगवान के गुणगान और उनके दिव्य लीलामृत रसपान में बीत जाए, यही है हमारी प्रार्थना। और इसी मनोकामना के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं। जय साई राम।